آج کل
दोस्तों कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम फिलिस्तीनी मुद्दे के हल के बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर के उपायों पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद अली गुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने फिलिस्तीन के मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिरोध की परिधि में केवल सैन्य उपाय पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि उसने राजनीतिक और कानूनी सुझाव भी पेश किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने 20 अक्टूबर सन 2000 को पहली बार फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए ईरान की तरफ से जनमत संग्रह या डेमोक्रेटिक योजना पेश की और 2020 के बसंत के मौसम में सुप्रीम लीडर की अपील पर तथा ईरान की संसद मजलिस शुरा इस्लामी तथा विदेश मंत्रालय के प्रयासों से ये योजना संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीकृत हुई।
सुप्रीम लीडर का ये ख्याल है कि मुसलमानों की दूसरों के कब्जे में आ चुकी ज़मीनों की वापसी और फिलिस्तीन संकट का एकमात्र समाधान प्रतिरोध और संघर्ष है, क्योंकि अतिग्रहित ज़मीनों पर मौजूद शासन केवल ताकत की भाषा ही समझता है। इसीलिए आरंभिक कदमों के आधार पर उसके साथ इंसानी और कानूनी तरीकों से बात नहीं की जा सकती। इसी तरह हालिया कुछ दशकों के इतिहास ने भी सिद्ध कर दिया है कि यह शासन किसी भी प्रकार के कानूनी, अंतर्राष्ट्रीय, नैतिक और इंसानी दंडों को स्वीकार नहीं करता, और प्रतिरोध ही एक ऐसा रास्ता है जिसको इसराइली शासन सही ढंग से समझता है। ईरान की इस्लामिक क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने ज़ायनी शासन की ओर से पहले ही इस्लामी जगत को सचेत किया था।
اونطور نیست که اکتفا کند به اون زمین هایی که غصب کرده است.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اسرائیل نے جن زمینوں پر قبضہ کیا ہے وہ کیول وہیں تک نہیں رکے گا۔
चूंकि ईरान प्रतिरोध और संघर्ष के मार्ग पर बल देता है, इसके बावजूद उसने जनता के मतों को भी महत्व दिया है और उसका ये मानना है कि इसका अंतिम हल ये है कि फिलिस्तीन की जनता, चाहे वो किसी धर्म या जाति से हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो या ईसाई हो, अपने भविष्य का निर्धारण खुद करे और एक जनतांत्रिक देश के रूप में ईरान के सुप्रीम लीडर के विचारों और जनमत संग्रह की योजना में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं पाया जाता। इस्लामिक क्रांति के सुप्रीम लीडर ने बार बार इस बात पर बल दिया है कि फिलिस्तीन का मुद्दा इस्लामी जगत का मुख्य मुद्दा है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई का कहना है,
मसले फिलिस्तीन امروز در رأس مسائل سیاسی دنیای اسلام و امت اسلامی است. همه موظفند از فلسطین و آزادی فلسطین و نجات ملت فلسطین دفاع کنند و براش مجاهدت کنند و کار کنند. با این کار هم ضربه بزرگتری خواهند خورد، بلا شک دنیای اسلام در مقابل اینها خواهد ایستاد.
उनका कहना है कि सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिश करें।
ईरान की ओर से पेश की गई इस योजना में चार मुख्य चरण हैं। पहला, विस्थापित फिलिस्तीनियों के अपनी ऐतिहासिक धरती पर वापसी का हक। दूसरा, बालफोर घोषणा पत्र से पहले फिलिस्तीन की धरती पर रहने वाले सारे फिलिस्तीनी की सम्मिलिति से जनमत संग्रह कराया जाना, जिसमें सारे धर्मों और जातियों के लोग शामिल हों और अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करें। तीसरा, ज़्यादातर फिलिस्तीनी जनता के दृष्टिगत राजनीतिक व्यवस्था का गठन और चार, अधिकतर लोगों द्वारा चुनी गई राजनीतिक व्यवस्था द्वारा फिलिस्तीन के गैर स्थानीय लोगों के बारे में फैसला लिया जाना। फिलिस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान कराची के वरिष्ठ सदस्य साबिर अबू मरियम से जब ये पूछा गया कि ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद फिलिस्तीन के मुद्दे में क्या क्या परिवर्तन आया है, तो उन्होंने कहा,
और हम ये देखते हैं 1967 और 1900, मैं बहुत ज्यादा पीछे तारीख में नहीं जाऊंगा कि कैसे इसराइल बना, क्या हुआ, किस तरह। बहरहाल 1967 की अरब इसराइल जंग और 1973 की जंग के बाद हमने देखा कि अरब जो अरब हुक्मरान थे उन्होंने हथियार फेंक दिए थे, सौदेबाजी पर उतर आए थे। जैसे वो मिस्र ने 1977 में इसराइल के साथ माहिदा कर लिया था, इसराइल को तस्लीम भी करने पे आ गए थे। लिहाजा ये वो वक्त था कि जब अरब अपनी हमियत को खो चुके थे और कोई रास्ता बाकी नहीं था, फलस्तीनियों की उमंगें भी दम तोड़ चुकी थी। वक्त के अंदर हमने देखा कि 79 के अंदर हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में सरज़मीन ईरान से इस्लामी इनकलाब का सूरज तुलू हुआ और फिर उसकी किरणें फलस्तीन से लेकर पूरे मशरक़ के पूरे एशिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उसने जो है उन किरणों को फैली और खासतौर पर इन किरणों ने जिन खित्तों को ज्यादा अपनी लपेट में लिया वो फलस्तीन की मुजामत जन्म लिया। वहां पर हमास आपके सामने पैदा हुई जबकि मैं यानी उससे कभी भी जहाद इस्लामी वो अपने दही जदोजहद कर रहे थे। लिहाजा बाकायदा तौर पर जो जहाद की सूरत हाल सामने आई है वो 79 के बाद फलस्तीनियों में एक नया जोशो गलवला देखने में आया। क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि पहले ही अरब जो है 77 तक खत्म हो चुके थे। लिहाजा यहाँ पर फिर इसके साथ आप देखें कि 1982 में इसराइल जब लुबनान में दाखिल हो गया तो वहां पर भी जो जो इंकलाब की किरणों से जो मुतासर होने वाले नौजवान थे जिन्होंने बाद में हिजबुल्लाह की शक्ल इख्तियार की उन्होंने ही वो इसराइल का वहां पर वो मुकाबला किया और फिर सन 2000 में इसराइल को निकाल फेंका। तो लिहाजा बहुत ही अगर आसान लफ्जों में कहा जाए, सादा लफ्जों में अगर बात की जाए, कहा जा सकता है कि इनकलाब इस्लामी ने जहां ईरान के अंदर एक नई रूह को फूंका है वहां उसने दुनिया भर के मुसलमानों के अंदर एक ऐसी नई रूह को जन्म दिया कि जो मुजाहमत की रूह थी, जो इस्लामी मुजाहमत की रूह थी जिसने फलस्तीनियों को दोबारा से उनके पैरों पर खड़ा कर दिया, जिसने लुबनान के मजलूम निहत्ते और पस्पा कर दिए गए आवाम को फिर असर न इसराइल जैसी खूंखार ताकत के सामने खड़ा किया और उनको शिकस्त दी।
वास्तव में ईरान ने न्यायपूर्ण और पूर्ण लोकतांत्रिक मार्ग का सुझाव दिया है। फिलिस्तीनियों का रेफरेंडम, चाहे वो फिलिस्तीन में रहने वाले हों या दूसरे देशों में फिलिस्तीन से निकाले गए हों, और उन्होंने अपनी फिलिस्तीनी पहचान की अभी तक रक्षा कर रखी है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या यहूदी। एक आम रेफरेंडम द्वारा जिस पर पूरी पारदर्शिता के साथ नजर रखी जाए और इसके परिणामों को सब स्वीकार भी करें, वो अपने राजनीतिक ढांचे का चयन करे और उन सारे फिलिस्तीनियों की स्वदेश वापसी हो जो इतने बरसों से कठिनाइयों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस रेफरेंडम के बाद फिलिस्तीन का संविधान तैयार हो और फिर सारे लोग आम चुनावों में हिस्सा लें, तभी जाकर फिलिस्तीन में शांति की स्थापना हो सकती है।
ईरान की ओर से सुझाव पेश किए जाने का मकसद इस्लामिक क्रांति की प्रवृत्ति, उसके द्वारा दिए गए नारों और विदेश नीति में ईरान के बर्ताव में निहित है। ईरान का संविधान भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ईरान के संविधान के 192 अनुच्छेद में आया है कि ईरान की विदेश नीति में हर प्रकार के वर्चस्ववाद और जोर जबरदस्ती को नकारा गया है। सभी देशों की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की गई है। दुनिया के सारे मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा तथा वर्चस्ववादी शक्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं, और शांति प्रेमी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की ओर संकेत किया गया है।
दोस्तों, इस्लामी गणतंत्र ईरान की विदेश नीति में कुछ अन्य सिद्धांत भी बयान किए गए हैं, जैसे दुनिया के मुसलमानों और कमजोरों का निसंकोच समर्थन। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 54 में आया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान दुनिया के हर इंसान के कल्याण को अपना लक्ष्य समझता है और स्वाधीनता, स्वतंत्रता, न्याय और सत्य की सरकार को दुनिया के सभी लोगों का हक समझता है। इसीलिए वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकारता है और दुनिया के हर कोने पर साम्राज्यवादियों के मुकाबले में कमजोर सत्य प्रेमियों के संघर्ष का समर्थन करता है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के एक टीकाकार का कहना है कि हमेशा ही खुली कूटनीतिक वार्ताओं, सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बैठकों और विदेशी कूटनीतिकों की चर्चाओं में हमेशा ईरान से ये सवाल किया जाता है कि तेहरान के पास फिलिस्तीन मुद्दे के हल के लिए क्या सुझाव है। इसलिए एक लिखित और स्वीकार्य सुझाव की आवश्यकता थी ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और द्विपक्षीय वार्ताओं में उसे पेश किया जा सके। इसलिए इस आवश्यकता को देखते हुए जो भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ईरान ने रेफरेंडम की योजना का चयन किया और उसे दस्तावेजी शक्ल में पेश कर दिया। वहीं दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करने वाली शक्तियां जो फिलिस्तीन के मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने में अपना रोल अदा कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती हैं। ऐसा क्यों है? इस बारे में पाकिस्तान में रहने वाली वरिष्ठ राजनीतिक टीकाकार फौजिया शाहिद का कहना है।
देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, तो उसमें वाजे तौर पे जिस तरह अभी अमेरिका के हवाले से बात हो रही है, यूरोप के हवाले से बात हो रही है, उनके मफादात तो हमें वाजे दिखाई देते हैं। और अगर ये देखा जाए कि इसराइल रियासत का जो क्याम है, उसमें भी हमें यही जो मफादात हैं उनके कि उस खित्ते में किस तरह वो अपने मफादात को पूरा कर सकते हैं, उसी बुनियाद पे ये एक उसको तस्लीम किया गया और एक रियासत का वजूद जो है वो सामने आता है। मैं चूंकि समझती हूँ कि फलस्तीन के हवाले से या इसराइल के हवाले से, एक तरफ तो हम यूरोप की बात करते हैं, लेकिन हमें अपना जायज़ा भी जो है उसको खुल के लेना चाहिए, हमें इस्लामी उम्मा का जायज़ा भी लेना चाहिए और हमें अपने किरदार को भी देखना चाहिए। इस्लामी ममालिक के जिनके ताल्लुकात वहाँ सफारती ताल्लुकात हैं, उन्होंने सफारती ताल्लुकात उसी तरह बरकरार रखे, तो जिनके बैरूनी ताकतों के, मगरबी ताकतों के या इस्तेमारी ताकतों के, उनके तो मफादात हैं, वो तो अपने मफादात पूरे करें, तो आपके भी तो मफादात आपने भी तो रख दिए। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस मसले के लिए जो तजवीज़ सामने आई है रेफरेंडम के हवाले से, जो बात आई है दुनिया में, ये मिसालें मौजूद हैं। रेफरेंडम जो है एक महज़ब दुनिया का, मैं समझती हूँ कि एक बेहतर तरीका इख्तियार किया जा रहा है, बल्कि तमाम ममालिक जो हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि उनके जो संगीन मसाइल आते हैं उसको रेफरेंडम के जरिए हल किया जाए। तो ये एक बहुत अहम तजवीज़ आई है, लेकिन इस तजवीज़ पे अब पीछे एक मुल्क की तजवीज़ को आगे चलाना होगा, और आगे चलाने के लिए हमारे जो फोरम है, जिस तरह मैंने भी जिक्र किया OIC का फोरम है या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी, मैं समझती हूँ कि उनमें अगर ये इंसानी नाते से वहाँ जो शहादतें होती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो मुजालिम आते हैं, और जो फुटेज मैं बाजुका, तो मैं तो, मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे होती है, मैं नहीं देख पाती, लेकिन इस कदर शदीद किस्म की वहाँ जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उस पर आंखें बंद करके खामोशी से बैठे रहना और ये देखते रहना कि कोई बरतानिया बोलेगा या यूरोप बोलेगा या कोई और मुल्क बोलेगा, ये नहीं होगा, हमें खुद करना पड़ेगा। और इस जिस तरह फलस्तीन को अभी रेफरेंडम के हवाले से भी मैं समझती हूँ कितना आसान नहीं होगा, यहूदी जो बस्तियां बनाई जा रही हैं, अफगान जो वहां से फलस्तीनियों को जिस तरह मजदूत किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी जो है इसकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी।
कुल मिलाकर ईरान की ओर से फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के सामने पेश किए गए सुझाव की वजह से ईरान की सॉफ्ट वार की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेहरान की छवि बेहतर हुई। इसीलिए हमें ये कहना चाहिए कि इस्लामी गणतंत्र ईरान को इन वर्षों के दौरान एक बेहतरीन, स्वीकार्य और समझने योग्य और राष्ट्र के निकट सम्मानीय सुझाव की आवश्यकता थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय नियम व सिद्धांत के रूप में निर्णायक साबित हो। दुनिया का कोई भी देश इसका विरोध नहीं कर सकता, और ईरान ने फिलिस्तीनी मुद्दे में अपनी सद्भावना का प्रदर्शन करने के लिए दुनिया के मंच पर फिलिस्तीन के मुद्दे को हमेशा पेश किया और दूसरे देशों के साथ इस मुद्दे के हल के लिए चर्चाएं भी की हैं। ईरान ने जो सुझाव पेश किया वो डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के आधार पर पेश किया गया है और कभी भी और किसी भी जगह पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। यही वजह है कि फिलिस्तीनी मुद्दे के संबंध में ईरान की ओर से पेश किए गए सुझाव को संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक सबूत और आधार के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है और किसी भी समय और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और इसको आधार बनाया जा सकता है।